તારીખ 28/12/1995 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ઈડરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 153
એમમાં એસી ક્યા વિશેષતા હૈ કે ઉસસે કર્મબંધન નહીં હોતા હૈ જો વિશે તો પ્રેમ કહેતી હૈ વો પ્રેમ કિસકે પ્રતિ હૈ किसका किसके प्रति है जिससे कर्म बंधन नहीं होता है ऐसा मालूम पड़ा। हाँ तो उसमें क्या है कि जो सदगुरु से सत्पुरुष से सत्संग में साधर्मियों से प्रेम करता है वो किस किस कारण से करता है, प्रेम करने की वजह क्या है? वहां दूसरों से कम क्यों सहज नहीं हुआ, वहां ही हुआ? जो प्रेम है वो चाहत है। क्या है? प्रेम है वो चाहत है। और सदगुरु में, सत्पुरुष में, साधर्मियों में ये तत्व होता है जिसको हम सद्गुण कहते हैं, उसके जो चाहत है, चाहे वो स्पष्ट समझ में हो या स्पष्ट समझ में नहीं भी हो, लेकिन प्रेम पैदा हो जाता है चाहत के कारण से, इस प्रकार की चाहत के कारण से। इसलिए इससे बंधन नहीं होता है। बंधन नहीं होने का यही कारण है कि वहां कोई मैलापन नहीं है, न कोई स्वार्थ है, न कोई वैसे सकामता है, सकामता भी नहीं है। इसलिए वो जाने अनजाने में भी सद्गुण की चाहत है, वो जीव को बांधती नहीं है। राग जीव को अवश्य बांधता है, द्वेष बांधता है, लेकिन प्रेम नहीं बांधता। यही कारण है इसके पीछे। अच्छा प्रश्न है। और भी बहुत सी बातें हैं,
कुछ बात खुल सकता है।
जिज्ञासा होनी चाहिए ना,
बाकी सब नहीं है।
क्या तो प्रश्न आ सकता है? अगर जिज्ञासा है तो प्रश्न आ सकता है। बिना प्रश्न
इच्छा मात्र राग है, कुछ भी इच्छा हो इच्छा मात्र राग है, राग से बंधन है।
राग इच्छा वो दोनों एक है, जबकि प्रेम एक अलग चीज है जो निर्मल होता है, ये मलिन होता है, और उसमें सद्गुण की चाहत होती है। वो सद्गुण है, वो आत्मा का स्वरूप है। तब तो ऐसा हो जाता कि स्वरूप की आसक्ति वाले को भी बंधन हो जाता, दूसरे की आसक्ति में। अच्छा जब सदगुरु चरण सु प्रेम बसे, कब ये मिलता है? सब साधन, सब साधन ऐसे तो बंधन हुआ, लेकिन ये बंधन कब नहीं हुआ? तो जब सदगुरु चरण सु प्रेम बसे। वो तो सब आगम का रहस्य मिल जाता है, तो वो साधन सिद्ध होता है और आगम का रहस्य मिल जाता है। ये निर्मलता कहाँ से आती है? बंधन से निर्मलता थोड़ी ना आ सकती है।
ये आत्मा के लिए आत्मा कल्याण की भावना से उत्पन्न होगा। आत्मा आत्मा को मानव संघ को देख के मान रहता है, सत्पुरुष के चरण जाने से मेरे सब प्रकृति आदि दोष करते हैं।
वो तो संकेत लिया है। अच्छा है, बंध और मोक्ष प्रतिपक्ष में है। बंध और मोक्ष प्रतिपक्ष में एक दूसरे का विरोधी है, साथ में कैसे रहेगा? उस भूमिका की है इसलिए कृपालु देव ने एक दफे ऐसा लिखा, मुंबई में सुभाग भाई आए होंगे, उसके सुभाग यहाँ पर है और वो प्रेम समाधि में है। क्या लिखा?
प्रेम समाधि।
तो समाधि तो चारित्र की दशा होती है, वितराग भाव, लेकिन ये मुमुक्षु की भूमिका में समाधि कहाँ से आई? तो उसका विशेषण लिया कि ये प्रेम समाधि थी, मतलब वो कृपालु देव के प्रति उतने प्रेम में डूबे हुए थे कि जैसे कोई समाधि में डूब जाए। तो उसको बोला कि ये प्रेम समाधि में है। क्योंकि उसको दूसरा विकल्प आता नहीं। एकाग्र चिंता निरोध हो ध्यानम, तो दूसरा कोई विकल्प आया नहीं, सब चिंता का निरोध हो गया। वो ध्यान कोई समाधि कहते हैं, वही ध्यान है उसकी कोई समाधि कहते हैं।
निर्विकल्प प्राणति होती है, तो निर्विकल्प प्राणति प्रेम तो प्राणति बन जाती है, प्राणति
उस भूमिका में उसको कोई भी नाम दे दो, उस भूमिका की बात है, वरना गलत फहमी हो जाएगी।
आपने देवलाली में बोला था आत्मा प्रेम की मूर्ति छे, प्रेम आपे छे, तो मैं भूल गया सही।
वो आत्मा का स्वरूप है, वो आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा तो वो अबंध स्वभावी है, तो प्रेम भी अबंध स्वभावी है। वो आत्मा का स्वरूप है इसलिए वो अबंध स्वभावी है, क्योंकि खुद आत्मा ही अबंध स्वभावी है। तो ऐसे सदगुरु के प्रति जो प्रेम आता है, वो एक आत्मत्व होता है वहाँ, उसको आत्मत्व भी कहते हैं, आत्मता। ऐसी प्रतिबद्धता मेरी छूटी नहीं, ऐसा लिखा है। मेरी ऐसी प्रतिबद्धता भी छूटी नहीं। और वो मुझे मंजूर है। हाँ, वो इसका आत्मा है। चार सौ छियासठ पत्र में लिखते हैं कृपाल देव कि आत्मा का मार्ग आत्मा में है, आत्मा का धर्म आत्मा में है, आत्मत्व प्राप्त पुरुष के द्वारा उपदिष्ट धर्म आत्मता मार्ग रूप होता है। सत्पुरुष शब्द नहीं लिया, सद्गुरु शब्द नहीं लिया, आत्मत्व प्राप्त पुरुष के द्वारा उपदिष्ट, जिसने आत्मत्व प्राप्त किया है, वो जो धर्म का उपदेश देता है वो आत्मता मार्ग रूप होता है, सम्यक दर्शन रूप मार्ग होता है। फलाना मैंने कोई भाषा नहीं दी, आत्मता मार्ग रूप होता है, उसमें आत्मपना होता है, आत्मापना होता है। इसलिए इसके छोड़ करके बाकी के मार्गों के मत में नहीं पड़ना। इतना विशाल है ये धर्म है, इतनी विशालता है, इतनी विशालता है इसके कि इसको कोई किनारा नहीं है। नदी को किनारा दो होता है और समुद्र को तो अनेक किनारे होते हैं, जबकि आत्मा के धर्म को कोई किनारा नहीं है। और समुद्र को और नदी को नीचे तल होता है, यहाँ कोई नीचे तल होता नहीं है।
Thank you.
परम प्रेम पर ब्रह्म परमात्मा वो प्रेम की बात है। वैसे का वचना बहुत अच्छा है, ले लेते हैं। 46 नंबर का वचना बहुत है, कोई कहता था तो भी। जीवन आत्मा में ही कर लेना चाहिए मुमुक्षु को। जीवन मैंने परिणमन आत्मा में कर लेना, ये मेरा आत्मा और मेरा आत्मभाव, मेरा आत्म कल्याण, इसके अलावा मुझे कोई कुछ चाहिए नहीं। जीवन आत्मा में ही कर लेना चाहिए, भले ही उपयोग सूक्ष्म होकर कार्य नहीं कर सकता हो, उतना अभी सूक्ष्म उपयोग नहीं हुआ हो, परंतु प्रकृति में ऐसा ही होता है कि यह कार्य करने से ही लाभ है, मुझे यही करना है, भले इतना उपयोग सूक्ष्म नहीं हुआ, कोई अंतर में स्वभाव को ग्रहण कर सके, कोई बात नहीं, इतनी योग्यता नहीं आई हो कि स्वभाव को पकड़ सके, लेकिन इतना पक्का हो जाना चाहिए। प्रतीति का मतलब यह है कि इतनी दृढ़ता आ जानी चाहिए कि यह कार्य करने से ही लाभ है, मुझे यही करना है, ऐसा जब आता है तो वो जी वर्तमान पात्र है। क्या लिखा है?
वर्तमान,
वो वर्तमान पात्र है, वो गर्भित पात्रता नहीं है, खुली पात्रता है, प्रकट पात्रता है, उसका काम अवश्य होगा, गारंटेड उसका काम होगा। ऐसी पात्रता वाले का काम नहीं हो ऐसा नहीं बनेगा, ये दृढ़ होना चाहिए।
ये वैसे परिमोहन वाले की बात है,
फिर सब आएगा तो मुझे यही करना है,
अपना वैसे बताया खाना है तो आत्म कल्याण के लिए, नहीं खाना है तो आत्म कल्याण के लिए,
एक ही बात है कि यही करना है, ये करने में ही मेरा लाभ है और मुझे यही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। फिर दूसरा करने का परिणाम आएगा तो वही निषेध आएगा, नहीं करने लायक परिणाम क्यों आता है, जो मुझे करना नहीं है ऐसा परिणाम क्यों आता है, निषेध आएगा। ऐसे दृढ़ निश्चय से, ऐसी दृढ़ता से आत्मा में जीवन कर लेना चाहिए। क्या था कि वो माँ जो ब्रह्मचारी बहने अपने घर छोड़ करके निवास किया, तो बोले जब हम लोगों ने निवृत्ति तो ले लिया, शादी बाजी भी नहीं किया और इस उम्र में नहीं किया, छोटी छोटी उम्र वाले आते थे मैंने, तो जीवन को आत्मा में कर लो ना, बना लो ना जीवन को आत्मा में बना लो, इधर आए ही हो, इसका मतलब यह कि देखो हमारा परिणाम, हमारी आत्ममयता देखो और अपना जीवन में वैसा बना लो। तो वर्तमान पात्र है, वो पात्र है ऐसा नहीं लिखा,
वर्तमान
वर्तमान पात्र है, अभी इसकी पात्रता प्रकट है।
तो वो बात आती ना, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा, आपको अंदर से ऐसा लगने लगता ना, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता है।
अंदर से फणकारा आएगा मुक्ति का, वो भी वर्तमान पात्र है। पात्रता के वाटिकल में अपने लिया है कई प्रकार की पात्रता का, मैं वर्तमान पात्र कैसे कैसे होते हैं, खास पात्र, वर्तमान पात्र, गर्भित पात्रता, ये सब कई बातें लिया है पात्रता के वाटिकल में। तत्वानुशीलन में इसका हिंदी उपयोगी आए छपा नहीं है। गर्भित पात्रता में वर्तमान में पात्रता दिखे नहीं, लेकिन योग्यता है तो कभी न कभी वो पात्रता बाहर आ जाएगी, ऐसा ज्ञानी को ज्ञान हो जाता है। ये जीव गर्भित पात्रता बहुत अच्छी है, इस पात्रता के प्रकार है, वो भी एक प्रकार है। उसकी पात्रता तो प्रकट पात्रता है, पात्रता प्रकट है, लेकिन वर्तमान में वो मार्ग को पाए प्राप्त करे ऐसी पात्रता नहीं है, उसको दूसरा भाव में आएगा वो बात। क्योंकि तो वर्तमान में तो दूसरी दूसरी बातें में भी है मार्गानुसारी में, जो देवगुरु शास्त्र संबंधित है, जो पुण्य मत में भी होते हैं, ईश्वर कर्तृत्व में भी उनको है, फिर भी पात्रता है, अच्छी पात्रता है, फिर भी अच्छी पात्रता है। और इसको इस सिद्धांत की सूझ है, कुछ सिद्धांतिक बातें निकलती है इसकी आत्मा में से निकलती है। मार्गानुसारी में क्या है कि इसकी आत्मा में से कुछ सत्य निकल जाता है, परम सत्य निकल जाता है। बहुत विचित्र परिस्थिति है। कबीर थे, अखा थे, नरसिंह मेहता थे, मीराबाई थे, बहुत से हो गए।
पढ़ता
है लिखा है परिभ्रमण करते अनंत काल बीत गया। उस अनंत काल में जीव ने आत्मा का करना है ऐसी भावना तो की, ऊपर ऊपर से बहुत बार किया, परंतु तत्व रुचि और तत्व मंथन नहीं किया। भावना की तत्व रुचि जरूरत नहीं आई, मंथन भी नहीं हुआ, उसके पीछे लगना चाहिए वो लगा नहीं, ऊपर ऊपर से भावना हुई। रुचने में तो एक आत्मा ही रुचे और कुछ नहीं रुचे, ऐसा जीवन बना लेना चाहिए। तो फिर दूसरी दूसरी बातें सुहाएगी नहीं। गुण की रुचि तो होती है, अब गुण की अरुचि होती है, गुण की रुचि होती है। गुण है वो आत्मा का स्वरूप, और आत्मस्वरूप के चर्चा में रुचि और ज्यादा बढ़ती है, तेज होती है। ऐसा बनता है कि नहीं बनता? भले ही नहीं देखा हो आत्मा,
गुणों की तो वैसे डिमांड होती है अंदर से, गुण ग्रहण करने की तो अंदर से डिमांड होती है आत्मा में। इसका मतलब का स्वभाव है गुण का, इसका मतलब तो उसका स्वभाव है गुण की रुचि को बढ़ाना चाहिए, ग्रहण करने की, ग्रहण करने की गुणों को, सरलता, मध्यस्थता, प्रयाग।
पराभक्ति के वश है, इसका जिन्होंने हृदय में अनुभव किया है, ऐसा अनुभव करने की, ऐसे ज्ञानियों की गुप्त शिक्षा है। क्या है? जो आत्मा का मूल स्वरूप है वो तो वितरागी स्वरूप है, निर्विकार स्वरूप है। तो जो किसी के प्रेम से वश हो वो निरागी और निर्विकारी कैसे हो सकता है? लेकिन जो प्रेम में पराभक्ति है वो निरागी को भी वश करता है। देखो, ताकत प्रेममय पराभक्ति की। जो परब्रह्म है वो केवल निर्विकार है, सामान्य रूप से संसार में जो वश होता है वो तो किसी भी प्रकार के राग के कारण से वश होता है। बिना राग कोई वशीभूत नहीं होता, जबकि प्रेम में पराभक्ति जो होती है आत्मा की, आत्मा का प्रेम, गुण निधान का प्रेम और उसकी पराभक्ति, उसका बहुमान, वो परिणाम ऐसा है कि वो निज निर्विकारी परमात्मा को भी वश कर लेता है। क्योंकि जब इसकी दृष्टि प्रकट होती है तो वो दृष्टि अपने स्वरूप पर कब्जा कर लेती है, उसको वश कर लेती है। तो कहते हैं कि ज्ञानियों ने कोई ऐसा काम किया, जो भी आत्मज्ञानी हुए उन्होंने अपनी प्रेममय पराभक्ति से अपने परमात्मा को भी वश कर लिया। ऐसा हृदय में अनुभव किया, ऐसा प्रगट परिणमन दिखाने से समझ में आती है, और वो बात रही गुप्त परिणमन है, वो गुप्त तत्व है। जाने का परिणाम दिखता है, वो परिणाम है वो ही, वो परिणाम खुद ही गुप्त शिक्षा है, वो परिणाम खुद ही गुप्त शिक्षा है, ऐसी बात है। बहुत गुड वचनामृत है ये, सुभाष भाई पर चिट्ठी लिखा है, पत्र तो सुभाष भाई पर लिखा है, और सुभाष भाई को प्रेममयी भक्ति थी। प्रेममयी भक्ति मैंने अकेली भक्ति नहीं थी, मात्र भक्ति नहीं थी, प्रेममयी भक्ति थी। अब उसकी चरम सीमा में वो ले जाना चाहते थे, उसको पराभक्ति कहते हैं, उसकी डिग्री होती है, वो डिग्री में आखिर की डिग्री जो होती है उसको पराभक्ति कहने में आती है। वो डिग्री बढ़ जाए उतनी तो भक्ति थी, प्रेम में भक्ति उतनी तो थी कि कृपालु देव उसके वश थे, कृपालु देव इसके वश थे। कृपालु देव की गुप्त शिक्षा थी कि परब्रह्म परमात्मा को भी वश कर लो, हमको वश किया तो आप में योग्यता तो आ गई कि आप भी परब्रह्म परमात्मा को भी वश कर सकोगे, जब सकोगे तो कर लो। यही हमारे परिणाम देख करके आपको गुप्त शिक्षा दे रहे हैं, क्योंकि ये शिक्षा खुले रूप में बातों में तो हो ही नहीं सकती, परिणाम की बातें परिणाम से होती है, परिणाम की बातें परिणाम से होती है, परिणाम की बातें शब्दों से नहीं होती। इसलिए उसको गुप्त शिक्षा कहने में आई है, क्योंकि वो वचनों में वो शिक्षा नहीं दी जाती, उपदेश वो इस प्रकार का उपदेश वचनों में नहीं आता, इसलिए शास्त्र में वो विषय है वो एब्सेंट रहा हमेशा, इसलिए शास्त्र से ज्ञान नहीं होता, यही कारण है इसके। तुम्हारा विषय एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, शब्द शास्त्र वचन रूप है, जबकि ये उपदेश परिणाम रूप है, तो चीज तो माह है नहीं शास्त्र में, परिणाम तो सजीवन मूर्ति में ही होता है, रोग भी प्रत्यक्ष हो तो मरना तो कोई इलाज नहीं है, कोई चारा नहीं। बहुत सी बातें बहुत गुड शब्द में कहते हैं, कृपा बहुत गुड शब्द में ये कहते हैं,
प्रत्यक्ष को इतना मुख्य क्यों किया है।
क्यों कि इसके सिवा तो परिणाम दिखेगा नहीं, ये तो बात आई कि नहीं आई, क्या परोक्ष का परिणाम दिखता है क्या, परिणाम तो प्रत्यक्ष का ही दिखेगा, और प्रत्यक्ष का परिणाम देख करके जो बोध मिलेगा वो बोध दूसरे कोई प्रकार से मिलेगा नहीं, क्योंकि इसकी कोई दूसरी पर्याय है ही नहीं, प्रत्यक्षता की कोई दूसरी पर्याय है ही नहीं, नो अल्टरनेटिव। बहुत अच्छा पत्र है ना, अरे कोई माधव लो उसमें आया हूँ।
Yeah.